ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। पेश हैं खबरें, पहले सुर्खियां। वजीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त से सख्त रवैया अख्तियार करने की जरूरत पर दिया जोर। कहा, पिछले 9 वर्षों के दौरान मरकजी और रियासती एजेंसियां दहशतगर्दी से सख्ती से निपटने में रही है कामयाब। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत गैर कानूनी अंजुमन दिया करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा के दौरे के दूसरे दिन आज अवामी वफूद के साथ लोगों के मसाइल और तरक्याती जरूरियात का लिया जायजा। टिकर में माता खीर भवानी स्थापन पर दी हाजिरी। और एलजी के हाथों बारामुल्ला में रबी फसलों के बीज लगाने की मुहिम का आगाज। फसलों की पैदावार और पैदावारियत में इजाफा करने के लिए किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी मशवरों से रोशनास कराने की जरूरत पर दिया जोर। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकजी और रियासती एजेंसियां पिछले 9 वर्षों के दौरान मुल्क में दहशतगर्दी की तमाम सूरतों पर सख्ती से काबू पाने में कामयाब हुई है। कल नई दिल्ली में कौमी तहकीकती एजेंसी NIA की तरफ से मुनक्कदा 2 रोजा एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी मुखालिफ मिसाली ढांचा NIA के दायरे इख्तियार में कायम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम रियासतों में मौजूद दहशतगर्द मुखालिफ एजेंसियों के तहकीकती अमल के SOPs में यकसानियत लाई जानी चाहिए ताकि मरकजी और रियासती एजेंसियों के बेहतर तालमेल को यकीनी बनाया जाए। अमित शाह ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इख्तराही इकदाम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम की कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP को एक गैर कानूनी अंजुमन करार दिया है। मजकूरा तंजीम 1998 से मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस रही है। वजारत दाखिला ने एक रिलीज में बताया है कि इसके मेंबरों ने हमेशा ही भारत में अलहद की पसंदी और दहशतगर्दाना सरगर्मियों को शह दी है। वजारत दाखिला ने कहा कि इस तंजीम के मेंबरान लोगों को उकसाकर कश्मीर को एक अलहदा इस्लामिक रियासत बनाना चाहते हैं जो भारत के इकतदार आला सलामती और यकजहती के मनाफी है। UAPA IPC की मुख्तलिफ दफात के तहत तंजीम के खिलाफ बहुत से फौजदारी मामला दर्ज किए जा चुके हैं। 9वां G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 13 और 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में मुनक्कद हो रहा है। इस ग्रुप में G20 ममालिक के सरबराह शामिल हैं और इसका मकसद आलमी हुकुमनामे निजाम को एक पार्लियामानी सिम्मत देना है। P20 का मौजू है पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नई दिल्ली में आज समिट के बारे में जराया ब्लॉक को जानकारी देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आलमी सतह के इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के 25 स्पीकर 10 डिप्टी स्पीकर और 50 पार्लियामानी अरकान शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि समिट के दौरान आब हवा की तब्दीली के अलावा सेहत तालीम ज़राअत तवानाई और दीगर अहम मौजूआत पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। P20 इजलास से पहले रवां महीने की 12 तारीख को पार्लियामेंट्री फोरम ऑन लाइफ नामी एक प्रेस समिट प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बारामुल्ला में रबी फसलों के बीज लगाने की मुहिम का आगाज करते हुए मुतल्लिक अफसरों पर जोर दिया कि वो तिलहन दालों और दीगर फसलों की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को हर तरह के इनपुट्स मुहैया करें। उन्होंने किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने की जरूरत पर भी जोर दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए LG ने कहा कि साल 2022-23 के दौरान वादी के किसानों ने 2027 मेट्रिक टन रबी फसलों की पैदावार हासिल की जिससे लगभग उन्हें 5000 करोड़ रुपए की आमदन हासिल हुई। उन्होंने कहा कि जरूरी सेक्टर विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा तबीर करने में एक कलीदी रोल अदा करेगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि किसानों की मेहनत और साइंसदानों के मशवरों और टेक्नोलॉजी की बदौलत अगले चार वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर के किसान तरक्की की एक नई राह पर गामजन होंगे। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर जरिए शोबे की तरक्की और इसके वसाइल को मुकम्मल तौर से बरोकार लाने में कलीदी अहमियत का हामिल है। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो हर एक पंचायत में पीएसीज कायम करें। उन्होंने कहा कि पीएसीज और एफपीओस से जरिए पैदावार में इस्तेकाम लाया जा सकेगा और ज़राअत और उससे मुंसलिक सेक्टरों को मैयार की बुलंदियों तक पहुंचाया जा सकेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा के दौरे के दूसरे दिन आज मुतद्दिद अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। इन वफूद में पंचायती राज इदारों के मेंबरान, सरहदी इलाकों के बस्कीन, तिजारती अंजुमने, अकलियती तबकों के नुमाइंदे, किसान रंस ट्रांसपोर्टर, मीडिया बरादरी और बार एसोसिएशन शामिल हैं, जिन्होंने गवर्नर को तरकियाती अमल से जुड़े मामलात और दीगर अवामी मसाइल से आगाह किया। एलजी ने वफूद को यकीन दिलाया कि उनकी तरफ से उजागर किए गए मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जराए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से शुरू की गई अवाम दोस्त पॉलिसियों की बदौलत जिला में तरक्याती मंजरनामे को दुआम हासिल हुआ है और एक आम इंसान पुरामन माहौल में जिंदगी गुजार रहा है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया के जाम इकदाम के नतीजे में जिला में सियाहती सरगर्मियों को भी फरोग हासिल हो रहा है। कुपवाड़ा के लिए रेल रबते के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि रेलवे वजारत ने जिला कुपवाड़ा को रेल रबते से जोड़ने के लिए रेल लाइन सर्वे को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि जिला का हर एक सेक्टर इस वक्त तरक्की की राह पर गामजन है।
मैं उत्साह के साथ विकास के रास्ते पर काफी लंबा सफर तय किया है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का कॉमन मैन बहुत सुकून की जिंदगी जी रहा है। एग्रीकल्चर और अलायड सेक्टर में भी काफी प्रगति हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो रोड के मामले में भी 2001 के सेंसस के आधार पर सभी गाँव कुपवाड़ा जिले के रोड से जोड़ दिए गए हैं। रोड कनेक्टिविटी दे दी गई। 2011 के सेंसस के आधार पर 8 गाँव बचे हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ दिया जाएगा। मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सेक्टर में भी पावर में काम हुआ है और पहले की तुलना में हमारी क्षमता काफी वृद्धि हुई है। टूरिज्म की दृष्टि से भी इस जिले में सुनियोजित ढंग से काम हो रहा है, जिससे गत वर्षों की तुलना में काफी संख्या में टूरिस्ट यहां आया है। सामान्य तौर पर जो मुख्य रूप से एक मेडिकल कॉलेज नया प्रारंभ हो गया है, जो बहुत ही वंचित इलाके थे सुदूर के, जहाँ जाना मुश्किल रहता था, 6 महीने जो बंद रहते थे और जिन्होंने कभी उजाला नहीं देखा था, ऐसे स्थानों पर भी बिजली पहुंचा दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 9,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ आवास दिए गए हैं। उसमें ऐसे एलिजिबल लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें प्रशासन ने 5 मरला जमीन उपलब्ध कराई है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसकी अपनी जमीन नहीं है, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन उसे 5 मरला जमीन उपलब्ध कराए।
दौरे के दौरान मनोज सिन्हा ने ग्रीन जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत सरमाई शजरकारी प्रोग्राम का भी आगाज किया। उन्होंने कहा कि जिला में इस मुहिम के तहत 8.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इससे पहले आज एलजी ने माता खीर भवानी स्थापन टिकर कुपवाड़ा में हाजिरी दी और जम्मू कश्मीर में अमन अमान, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। वाज़ह रहे कि मनोज सिन्हा ने कल रात कुपवाड़ा में गुजारी और अवामी वफूद और अफसरों के साथ मीटिंगों के दौरान उन्होंने जिला के तरक्याती मंजरनामे और लोगों की जरूरियात का तफसील से जायजा लिया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने आज जिला इंतजामिया के अफसरों के साथ एक मीटिंग में चराज शरीफ में हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के हवाले से जायरीन के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। वाजह रहे कि ज्यारतगाह पर पोशाक बंदी 11 अक्टूबर शब खानी 12 अक्टूबर को होगी, जबकि उर्स मुबारक की तकरीबात 13 अक्टूबर को मुनक्कद होंगी। डॉक्टर अंद्राबी ने लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए मुख्तलिफ महकमों के बाहमी तालमेल को उजागर किया। عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جمعہ کے موقع پر آج وادی کی خانقاہوں، زیارت گاہوں، مساجدوں میں خصوصی دینی مجالس کا انعقاد ہوا، جن میں علماء دین نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا۔ اس تعلق سے سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز جمعہ ادا کی۔ آج آثار شریف میں نماز پنجگانہ کے بعد لوگ موئے پاک حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب ہوئے۔ لوگوں نے بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو کر امن و امان اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ اسی طرح کی روح پرور مجالس وادی کے دیگر بقاجات میں بھی منعقد ہوئے، جہاں ائمہ حضرات نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انتظامیہ نے زائرین کی سہولت کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے تھے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں۔ بھارتیہ ریزرو بینک آر بی آئی کے گورنر شکتی کانت داس نے آج اعلان کیا ہے کہ مالی پالیسی کمیٹی ایم پی سی نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ ریپو ریٹ کو 6.50% پر ہی برقرار رکھا جائے۔ ایم پی سی کی 3 روزہ میٹنگ آج اختتام پذیر ہو گئی۔ آر بی آئی کی طرف سے آج جاری ایک بیان کے مطابق مائکرو معیشت اور تازہ اقتصادی واقعات کے ایک تفصیلی جائزے کے بعد اس نے لگاتار چوتھی بار پالیسی ریپو ریٹ کو جوں کا توں برقرار رکھنے کے لیے متفق کا فیصلہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں جمع رقم ایس ڈی ایف کی شرح بھی 6.25% ہی رہے گی۔ سکاسٹ شوہما میں آج سے گریز کی خواتین کاریگروں کے لیے چرخہ کاٹنے میں اختراعی طور طریقوں سے متعلق 5 روزہ تربیتی پروگرام شروع ہوا۔ ابتدائی تقریب میں ڈائریکٹر ایکسٹینشن سکاسٹ ڈاکٹر دل محمد مخدومی اور دیگر سائنسدانوں نے شرکت کی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ یونیورسٹی اس طرح کے تربیتی پروگراموں کا انعقاد کرتی رہے گی تاکہ دیہی خواتین کے معیار زندگی میں بہتری لائی جا سکے۔ شری ماتا ویشنو دیوی استھاپن کٹرا میں شردالوں کی حاضری دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سال اب تک ستمبر کے آخر تک 73 لاکھ شردالوں نے ماتا ویشنو دیوی استھاپن پر حاضری دی۔ دریاسنا 15 اکتوبر سے شروع ہونے والی نوراترا کے تہوار کے سلسلے میں تیاریاں جوش خروش سے جاری ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس دلباغ سنگھ نے 140 پولیس اہلکاروں کے حق میں 1.70 کروڑ روپے کے ویلفیئر لون کو منظوری دی ہے۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں کے ان 195 بچوں میں بھی اسکالرشپ واگزار کیے جنہوں نے 12ویں جماعت میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ چین کے ہانگژو میں ایشین گیمز میں بھارت نے 21 سونے، 32 چاندی اور 35 کانسے کے تمغوں سمیت مجموعی طور پر 88 تمغے حاصل کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ اس وقت بھارت تمغوں کی فہرست میں 4th مقام پر ہے۔ جکارتا میں ہوئے 18ویں ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے مجموعی طور پر 70 تمغے حاصل کیے تھے، جس کے مقابلے میں یہ ایشیائی کھیلوں میں بھارت کی اب تک کی سب سے بہترین کارکردگی ہے۔ مردوں کے آئی سی سی ورلڈ کپ کرکٹ کے ایک اور میچ میں اس وقت پاکستان کا مقابلہ نیدرلینڈ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پاکستان نے نیدرلینڈ کو جیت کے لیے 287 رن کا ہدف رکھا ہے۔ پاکستان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 49 اوورز میں 286 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی، جبکہ آخری اطلاعات ملنے تک نیدرلینڈ کا سکور 3 وکٹوں کے نقصان پر 125 تھا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.1 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔